परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो। मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा तेरे, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो। तेरे से तुझे पाने से बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन। तेरे आने से तुझे पाने से बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन। मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा तेरे लिए,
प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले अध्ययन के द्वारा हमने बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त किया है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आप अपने जीवन में अवश्य ही आशीषों को प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके जीवित और सामर्थी वचन को रेडियो के माध्यम से सुने तो आपका वचन उनके हृदय से बोलने और बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय निराश, परेशान और तनाव और चिंता में हैं। आप उनके साथ में हो, उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, अपने वचन से बोले और बातचीत करें। इसी रीति से हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो बेरोजगार हैं या किसी अन्य प्रकार के तनाव में हैं। प्रभु, आप उन्हें भी अपनी शांति दें। आज के वचन के द्वारा हम सब से बोले, बातचीत करें, हमें समझाएं, सिखाएं, ताकि हम आपके पवित्र नाम में आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बाइबल अध्ययन के लिए गया हुआ था तो हमारे एक शिक्षक ने हमें एक कहानी सुनाई थी। कुछ समय पूर्व मैंने एक मनुष्य के बारे में पढ़ा जिसने उत्तर भारत में कुछ वर्ष बिताए थे। घर लौटने के बाद वह अपने मित्रों के घर में उत्तर भारत के विषय चर्चा कर रहा था और उनकी परिचर्चा सेवा कार्य की ओर बढ़ चली थी। और इस व्यक्ति ने कहा, मैंने उत्तर भारत में देखा कि सेवक कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने वहां एक भी सेवक से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया। मेरे विचार में कलीसिया प्रचार सेवा में अपना पैसा गंवा रही है। वहां एक वृद्ध पुरुष तब तक आ चुका था जो चुप बैठा था। उसने कहा, क्षमा करें, आपने बताया कि आप कितने समय भारत में थे, अर्थात उत्तर भारत में थे। उसने कहा, 5 महीने। आप वहां क्यों गए थे? मैं बाघ का शिकार करने के लिए गया था। क्या आपने वहां बाघ देखे? उसने कहा, हजारों। उस वृद्ध पुरुष ने कहा, बड़ी विचित्र बात है, मैं 30 वर्ष उत्तर भारत में रहा और मैंने एक भी बाघ नहीं देखा, परंतु सैकड़ों सेवक देखे। आप बाघ मारने उत्तर भारत गए और आपने बाघ देखे। मैं प्रचार सेवा के लिए उत्तर भारत गया था और मैंने वहां अनेक सेवकों से भेंट की। मेरे मित्रों, यह निर्भर करता है कि आप क्या खोज रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के कार्य के प्रति चिंतित हैं? क्या आप परमेश्वर का वचन सुनाने का बोझ रखते हैं? लोग कहते हैं, मैं प्रगति नहीं देखता। आप शायद कार्यस्थल पर नहीं हैं। परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है और मनुष्य के जीवन और मन में वह प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता परंतु फल लाता है। आइए हम पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। जी हां, ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आज्ञाएं हम पर बोझ नहीं है। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर की संतान उसकी आज्ञाओं का पालन करने की लालसा करती है। उसके लिए आज्ञा मानना कठिन नहीं है। एक बार एक छोटी बालिका एक बच्चे को गोद में उठाकर ले जा रही थी। उस पर तरस खाकर एक महिला ने पूछा, यह तुम्हारे लिए भारी नहीं है? उस बालिका ने कहा, नहीं, यह मेरा भाई है। यही तो अंतर है, वह आपका भाई है। परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। वह हमारे लिए कठिन नहीं है क्योंकि हम प्रेम के कारण आज्ञाओं का पालन करते हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी नगर में आकर एक दुकानदार से पूछने लगा, यह नगर कैसा है? दुकानदार ने पूछा, आप कैसे नगर से आ रहे हैं? उसने कहा, मैं एक बहुत अच्छे नगर से आ रहा हूं। वहां सब एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे की सुधि लेते हैं। वहां के नागरिक बहुत ही अच्छे हैं। हम वहां से जाना तो नहीं चाहते थे, परंतु हमें पश्चिम की ओर जाना था। हम नहीं जानते कि कहां रुकें, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह नगर कैसा है। दुकानदार ने कहा, यह नगर वैसा ही है जिसे आप छोड़कर आए हैं। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे विचार में हमें यहीं बस जाना चाहिए। और वे आगे बढ़ चले। कुछ देर में एक और गाड़ी आई, उसमें से एक व्यक्ति उतरा और उसने भी वही प्रश्न किया, यह नगर कैसा है। दुकानदार ने भी वह प्रश्न पूछा जो उसने पहले से पूछा था, जिस नगर से आप आ रहे हैं वह कैसा है। उसने कहा, हम प्रसन्न हैं कि हम वहां से निकल आए। वे अति दुष्ट लोग हैं, वे ना तो मित्र थे और न ही कभी सहायता के लिए खड़े होते थे। वहां हमारा कोई भी मित्र नहीं था, इसी कारण हम वहां से निकल आए। दुकानदार ने कहा, मेरे विचार में आप यहां भी वैसे ही लोग पाएंगे। वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। उस दुकान में एक व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, आपने उन दोनों से दो प्रकार की बातें की, क्यों? दुकानदार ने कहा, मैंने देखा है कि प्रत्येक नगर वैसा ही होगा जैसा नगर आप छोड़कर आए हैं, क्योंकि आप वैसे ही हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर की संतान को किसी से भलाई पाने की आशा नहीं रखना है, उसे ही चिंता करके प्रेम प्रदर्शन करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:35 में प्रभु यीशु ने कहा कि आपके प्रेम को देखकर सब जान लेंगे कि हम उसके शिष्य हैं। यदि आप प्रभु यीशु से और परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप विश्वासियों से भी प्रेम करेंगे। आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे जो कठिन नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 11:30 में प्रभु यीशु ने कहा कि उसका जुआ हल्का है। यदि आप में प्रभु यीशु के लिए प्रेम नहीं और आप उसकी सेवा करना नहीं चाहते तो उसका जुआ भारी होगा, अन्यथा कलीसियाई कार्य और सेवा कठिन नहीं है। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 5:4 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मसीही जीवन में जय पाने के बारे में हम आज बहुत चर्चा सुनते हैं, परंतु यह एक विचित्र बात है कि नए नियम के युग में यह एक दुर्लभ घटना है। वह क्या है जो संसार पर जय पाता है? यह हमारा विश्वास है। जी हां, विश्वास ही से हमारा उद्धार है और विश्वास ही से हमारी सुरक्षा है। हम विश्वास से उद्धार पाकर विश्वास में चलते हैं। हम प्रभु यीशु में विश्वास रखकर परमेश्वर की संतान होते हैं। केवल विश्वास ही है जिसके द्वारा हम इस संसार पर जय पा सकते हैं। हमारा एक बैरी है जिसके बारे में यूहन्ना पहले भी कह चुका है, 1 यूहन्ना 2:15 में, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। इस संसार में देह की अभिलाषाएं हैं जो शैतान की हैं। वर्ड सर्वत कहता है, संसार हमारे लिए अति है। विश्वासी इस संसार में रहते हैं परंतु इस संसार के नहीं है। यह संसार दुष्ट और बुरा है, हम इसमें फंस सकते हैं। यह एक बहुत सागर है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहोशू इसराइल को लेकर प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर रहा है। यहां स्मरण रखें कि प्रतिज्ञा का देश स्वर्ग का प्रतीक नहीं है। यह परमेश्वर के वचन के अनुकूल नहीं कि हम कनान को स्वर्ग का प्रतीक कहें। कनान वास्तव में विश्वासियों के लिए सांसारिक परिस्थिति है। हम जंगल की स्थिति में भी वास कर सकते हैं, और आज अनेक विश्वासी जंगल वास में हैं। जंगल में आनंद नहीं होता है, जंगल की यात्रा आसान नहीं होती है। कनान जो एक देश है, कनान देश में सब आत्मिक आशीषें हैं। यहोशू के लिए कनान प्रवेश करना हल्का नहीं था। यदि हमें आज आत्मिक आशीषों की आवश्यकता है, तो हमें यह बोध होना है कि युद्ध करके विजय पाना है। बैरी हमें युद्ध के बिना अधिकार नहीं करने देंगे। प्रतिज्ञा के देश में यहोशू के सामने तीन बैरी थे। उन्हें जीते बिना वह प्रतिज्ञा के देश में अधिकार नहीं कर सकता था। उनका पहला बैरी यरीहो था, जो सांसारिकता का प्रतीक है। वह उस क्षेत्र को दो भाग करके जीतना चाहता था। दूसरा बैरी था ऐ नगर। वह एक छोटा सा नगर था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे जीतना बहुत आसान है, परंतु वही उनकी हार थी। विश्वासी संसार को तो हरा देते हैं, परंतु देह से हार जाते हैं। अधिकांश विश्वासी सांसारिकता से तो दूर रहते हैं, परंतु पीठ पीछे बुराई करने से नहीं चूकते। वे देह की कामों में उलझ जाते हैं। वे यरीहो के चारों ओर तुरही फूंक सकते हैं, परंतु ऐ नगर के परिक्षेत्र में तुरही फूंकने से चूक जाते हैं। तीसरा बैरी था गिबोन, जो शैतान का प्रतीक है। उन्होंने यहोशू को धोखा दिया। शैतान आरंभ ही से झूठ बोलता आया है। वह आज भी बड़ी चतुराई से धोखा देता है। मेरे मित्रों, आइए हम पद चार को यरीहो के संदर्भ में देखें। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आप परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए आप संसार पर जय प्राप्त करेंगे। कैसे? और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह हमारा विश्वास है। जय पाने के लिए हमें युद्ध नहीं करना है, हमें विश्वास की आवश्यकता है। यहोशू ने यरीहो को कैसे जीता था, आप इसकी कहानी जानते हैं। क्या उसने युद्ध किया था? उसने युद्ध नहीं किया था। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह उस नगर का चक्कर काटे और सेना की अपेक्षा याजकों को रखे, जो वाचा का संदूक लेकर चलेंगे। उन्हें चक्कर काटते समय तुरही फूंकना है। उन्हें आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक अति विचित्र रणनीति थी जो परमेश्वर ने यहोशू को सुझाई थी। यरीहो का राजा सोच रहा था कि इसराइल जल प्रलय के समान उन पर आक्रमण करेगा, अतः वे एक विशाल सेना का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार किए हुए थे और उन्होंने नगर द्वार बंद किए थे। उनकी सेना आक्रमण की तैयारी में अति सतर्क थी, परंतु इसराइल ने नगर का एक चक्कर काटा और अपने शिविर में लौट गए। निश्चय ही उस दिन सेना अधिकारियों ने रात में राजा के साथ इसराइल की रणनीति पर अवश्य ही विचार किया होगा, अतः उन्होंने अगले दिन के लिए अपनी चौकियों में परिवर्तन किया। अगले दिन सुरक्षा सैनिकों ने संकेत दिया कि वे आ रहे हैं। वे पूरी तरह तैयार थे कि आज इसराइली नगर द्वार को तोड़ेंगे और सैनिक शहर पर आक्रमण करेंगे और तब वे उन पर टूट पड़ेंगे, अर्थात सैनिक शहर पनाह पर उबलता हुआ तेल और पानी लेकर तैयार थे। परंतु इसराइल ने नगर द्वार से प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अगले दिन भी नगर का चक्कर काटा और चले गए। 6 दिन तक उन्होंने ऐसा ही किया। अब तक तो यरीहो के सेना नायक परेशान हो गए होंगे कि उनके शत्रु आखिर कर क्या रहे हैं। 7वें दिन जब इसराइल ने चक्कर काटा, तो यरीहो के सेना अधिकारियों ने राहत की सांस ली और सोचा वे आक्रमण नहीं करेंगे, वे पागल हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से तो ऐसा करना पागलपन ही था। आपको भी मानना होगा कि ऐसी रणनीति अति विचित्र है। उनके सुरक्षा कर्मियों ने सूचना दी कि आज वे अपने शिविर को लौट नहीं रहे हैं, वे एक और चक्कर काट रहे हैं। इसराइल ने 7 बार उस नगर का चक्कर काटा और तुरही फूंकी तथा इसराइल ने नारा लगाया और शहरपनाह गिर गई। इसराइल नगर के चारों ओर था। यरीहो की सेना ऐसे आक्रमण से हतप्रभ थी। इसराइल ने यरीहो को कैसे जीता? लड़कर? जी नहीं, वे परमेश्वर के अप्रत्यक्ष सेनापति के आदेशों के अनुसार शहर का चक्कर काट रहे थे। मेरी उलझन का कारण यरीहो के शहरपनाह का गिरना नहीं है, यह तो पुरातत्व का प्रमाणित सत्य है। मेरी उलझन का कारण था कि यहोशू जैसा युद्ध कुशल अगुआ परमेश्वर के इस रणनीति से सहमत कैसे हुआ। इसका उत्तर उस घटना में है जब यहोशू ने एक योद्धा को तलवार लिए शिविर के बाहर खड़े देखा था। यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसके 13 से 15 पद में हम पढ़ते हैं, यहोशू उससे पूछता है, क्या तू हमारे साथ है या हमारे बैरियों के साथ है? अनुवाद तो ऐसा ही है, परंतु यहोशू ने पूछा होगा, तुझे तलवार खींचने को किसने कहा है? यहोशू अपने आप को अगवा समझता था, परंतु जब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया तब यहोशू को बोध हुआ कि वह एक अलौकिक व्यक्ति है। मेरे विचार में वह देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु था। यहोशू ने उसे दंडवत किया। इस प्रकार यरीहो पर आक्रमण करने से पूर्व यहोशू जान गया था कि उनका सेना मुख्यालय उसके शिविर में नहीं स्वर्ग में है। उस अलौकिक व्यक्ति ने यहोशू से कहा था, यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय के 14 पद में, नहीं वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। दूसरे शब्दों में उसके कहने का अभिप्राय था कि उसका युद्ध सांसारिक ही नहीं आत्मिक भी है और वह उसकी सेना का सेनापति है। अब कप्तान यहोशू यहोवा की सेना के सेनापति से आदेश लेगा। उसका आदेश था यरीहो का चक्कर काटो। यदि आप यहोशू से पूछते कि वह ऐसा विचित्र काम क्यों कर रहा है तो वह कहता, यह निश्चय ही विचित्र है, परंतु हमारे सेनापति का आदेश है। सेना में कोई प्रश्न नहीं करता है, वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। इसी प्रकार यहोशू भी आदेशों का पालन कर रहा था। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 30 पद में लिखा है कि यरीहो की दीवारों का गिरना विश्वास का परिणाम था, उसमें सैनिक युक्ति का कहीं भी कोई स्थान नहीं था। मेरे प्रियो, हमारे लिए इसमें क्या शिक्षा है? हम युद्ध करके संसार पर जय नहीं पा सकते हैं। मैं कभी किसी सुधार आंदोलन में सहभागी नहीं हुआ, चाहे वे प्रभावी और उच्च कोटि के ही क्यों न थे। मैं उनकी समितियों पर भी नहीं रहा, क्योंकि मेरी बुलाहट वह नहीं थी। आप लड़कर संसार पर जय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुझे एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने सुधार समिति की सदस्यता का न्योता दिया, परंतु मैंने इनकार कर दिया, जबकि नगर में सुधार की आवश्यकता थी, वह मेरी बुलाहट नहीं थी। मैंने उससे कहा कि परमेश्वर ने मुझे मछली पकड़ने के लिए बुलाया है, तालाब साफ करने के लिए नहीं। मैं वचन का प्रचार करता हूं और सुधार का काम पवित्र आत्मा पर छोड़ देता हूं, यह उसका विभाग है। मेरा काम वचन का प्रचार करना है। यहोशू के पास अपनी सेना थी, परंतु उसका काम था परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यरीहो की शहरपनाह गिर गई। मेरे मित्रों, आज हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं और विश्वास ही के द्वारा संसार पर जय पाएंगे। युद्ध करके नहीं, इस संसार के साथ व्यवहार करने की यही एक हमारी युक्ति है। यह हमारे लिए एक महान शिक्षा है। यदि आज हम इसका पालन करें तो निश्चय जाने कि हम भी अपने विश्वास में आगे बढ़ने पाएंगे, और इतना ही नहीं, हम अपने जीवन में जय प्राप्त करेंगे। परंतु प्रश्न यह है कि क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? क्या हम उसके वचन का पालन कर रहे हैं? आज कलीसियाओं में बहुत सारे लोग हैं, परंतु दुखद बात तो यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं। आज हमें चाहिए कि हम भी यहोशू के समान परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, ताकि हम अपने जीवन में शांति आनंद प्राप्त कर सकें। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का दास यहुना हमें यही कहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि हर एक विश्वासी जो उस पर विश्वास करता है उसके लिए आवश्यक है कि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, और परमेश्वर इसके द्वारा से हमें जय प्रदान करता है। हम अपने जीवन में एक जयवंत जीवन जी सकते हैं, न कि लड़ करके, न कि किसी की बुराई करके, परंतु परमेश्वर के निकटता में होकर हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है, और आपने अपने जीवन के लिए एक सच्ची और महान शिक्षा को प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा दर्द मैं ये समझाऊं। वादा ये रहा भूले भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा दर्द मैं ये समझाऊं। जान भी दूंगा।
सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम।